ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है, जैसे बाबा ज्ञान के सूर्य हैं, ऐसे आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। और जैसे सूर्य दुनिया का अंधकार मिटा देता है, ऐसे आप बच्चे भी दुनिया से बुराइयों का अंधकार मिटाने वाले हो। बाबा कहते हैं कि ऐसे तो बाबा की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सूर्य भी बाबा के आगे क्या है और सागर भी बाबा के आगे क्या है, लेकिन और कोई चीज है ही नहीं जिससे बाबा का कंपेयर करें। तो दो ही चीजें दिखती हैं, एक सूर्य और एक सागर, दोनों ही अनंत अथाह है, बेहद। और फिर बाबा ने हम बच्चों को भी मास्टर बना दिया। मास्टर का अर्थ होता है उसकी कॉपी है, वैसे ही गुणों वाला, उसको मास्टर बोलती है। तो हम केवल सूर्य की तरह ही मास्टर नहीं है, सारे गुणों में मास्टर हैं, शीतलता में भी मास्टर है, रोशनी में भी मास्टर है। और लौकिक दुनिया में भी लोग जब देने की बात आती है तो किसका उदाहरण देते हैं? सूर्य का, पेड़ों का, नदी का, प्रकृति का। इसलिए सूर्य देवता, नदी की भी पूजा होती है, पेड़ों को भी देवता माना जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, आप भी देवता हो। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देव देवता, एक लेव लेवता। तो हम बाबा के बच्चे देवता हैं। हमने भी समाज से लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन जिनसे लिया हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, और मन में सोचते हैं कि जिनसे लिया किसी तरह उनका रिटर्न कर दें जाने से पहले, ताकि आत्मा उऋण हो जाए। तो जो भारत की संस्कृति है उसको देवता संस्कृति कहा गया है, देने वाले हैं। सतयुग में हम सब देवी देवता थे, वहां देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम दे दे कर ही देवता बने। तो इसलिए देवी संस्कृति हमारी आदिकालीन संस्कृति है। उसके बाद वैदिक संस्कृति आई, देवी संस्कृति के बाद। वैदिक संस्कृति अर्थात जब वेदों की रचना हुई, जब मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ और ये महाभारत वगैरह रचे गए, द्वापर के कुछ एक साल गुजरने के बाद, समझो 100-200 साल गुजरने के बाद, तो उसमें लोगों ने यज्ञ करना चालू किया। और यज्ञ के पीछे भी यही भावना थी कि हमको देना है, लेना नहीं है। यज्ञ क्यों करता है मनुष्य, उसके पीछे फिलोसोफी क्या है कि भाई हमने सारा जीवन प्रकृति के तत्वों का उपभोग किया, और उसमें भी पृथ्वी को मैला कर दिया, हवा को गंदा कर दिया, क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं, तो ये तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया, तो इस ऋण को हम कैसे उतारें। तो इसको उतारने का तरीका ये है कि आग में अगर हम घी जलाएंगे तो उससे जो खुशबू फैलेगी, उस खुशबू से हवा का शुद्धिकरण होगा, हवा में जो गंदे तत्व प्रवेश कर गए हैं, कीड़े मकोड़े या और जो भी, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे, और ये प्राणवायु शुद्ध होगी तो संसार के लोगों को सुख मिलेगा। प्राणवायु ही अगर अशुद्ध हो गई तो कोई जिएगा कैसे। इसलिए खूब घी जलाओ, तिल जलाओ, समीधा, ऐसे करके लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, 21 दिन का, 41 दिन का, 51 दिन का, ऐसे करके लंबे समय तक डाली। अब उसमें भी व्यक्ति की त्याग भावना रही, भाई घी को वो खा सकता था, सब्जी भाजी बना सकता था, मिठाई बना सकता था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग ना करके यज्ञ में जला दिया। तो एक प्रकार से ये उसकी देने की भावना है। तो उस युग में, उस वैदिक संस्कृति में यज्ञ करने वाले को बहुत महान माना गया और जो यज्ञ करता है उसे बहुत परोपकारी माना गया। और राजाओं ने, ऋषियों ने खूब यज्ञ किए, खूब खर्च कर करके भी यज्ञ किए, लेकिन प्रकृति का प्रदूषण तो आग में घी डालने से खत्म हो जाएगा थोड़ा बहुत, पर आज प्राकृतिक प्रदूषण से ज्यादा मानसिक प्रदूषण है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा आप मानसिक यज्ञ करो। वो लोग वायु का शुद्धिकरण करते हैं घी तिल से, आप संकल्पों से वायुमंडल का शुद्धिकरण करो, निरंतर आहुति डालते जाओ। तो हमारा मानसिक यज्ञ 24 घंटे चलता है, निरंतर आहुति डाल रही है, इसका भला हो, उसका कल्याण हो, उस वो बाबा से जुड़ जाए, वो बाबा से जुड़ जाए, वो आत्मा पवित्र बन जाए, उस आत्मा के विकार छूट जाए। हम भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ का पुण्य बहुत मिलता है। तो हमारे यज्ञ का तो इतना भारी पुण्य है कि 2500 साल के लिए ये सृष्टि बिल्कुल पावन बन जाएगी। उनके यज्ञ से तो थोड़ी बहुत देर वातावरण शुद्ध होता है। तो ये सारा जो हमारा सिस्टम बना, इसमें देने की भावना सर्वोपरि रखी गई। हमारा जो जीवन चलता है, या बाह्य प्रकृति में भी आप देखिए, समुद्र ने बादलों को जल दिया तो बादलों ने ले लिया, लेने के बाद अपने पास भरे नहीं रखा, उसको बरसा दिया, तो धरती आया, धरती पर आया, धरती ने उसको अपने लिए नहीं रखा, या तो नदी के रूप में बहा दिया या फिर पेड़ पौधे उगाए। नदी के रूप में जो बहा, नदियों ने भी अपने पास नहीं रखा, पुनः समुद्र में गया, फिर समुद्र ने उसको उड़ा दिया। एक व्यक्ति भी अगर, एक प्रकृति का तत्व भी अगर उसे रोक लेता तो प्रवाह रुक जाता, या तो बादल रोक लेते या तो नदी रोक लेती, किसी ने भी नहीं रोका। तो ये प्रवाह चला आ रहा है, कितने बरस हो गए, रुका नहीं आज तक। और ये भी आप देखिए, जब बादल जल से भरता है तो वो काला हो जाता है, और जब उसका दान कर देता है तो सफेद हो जाता है। तो जो व्यक्ति संग्रह करेगा वो काला हो जाएगा, और जो दान कर देगा अर्थात लुटा देगा अर्थात दे देगा वो वाइट हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, बच्ची इकट्ठा मत करो, कोई भी चीज इकट्ठी मत करो। शरीर में भी कहीं खून इकट्ठा हो जाए तो नुकसानकारक, कहीं मांस इकट्ठा हो जाए तो नुकसानकारक, अगर बुद्धि में बातें इकट्ठी हो जाएं तो नुकसानकारक, और घर में अगर चीजें इकट्ठी हो जाएं तो नुकसानकारक, इकट्ठा होने ही मत दो। इसलिए कबीर दास जी का एक दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बस इतना ही देना कुटुंब के काम आए। अर्थात उस समय ये प्रेरणा दी गई कि कम से कम रखो और अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करो समाज। फिर हमारा जो शरीर चलता है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे चलता है। देखो मेहनत करके हाथों ने पैसा कमाया, सबसे ज्यादा काम हाथों को करना पड़ता है। कोई होटल में काम करता है, हाथ ज्यादा काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में कोई चीज बनाता है, कोई कपड़ा बुनता है, स्वेटर बुनता है, कोई भी काम करता है हाथों का, लिखता पढ़ता है तो भी हाथों का मुख्य रोल है। लेकिन क्या हाथ उस सारे पैसे को खा लेते हैं? हाथ कमाते कमाते हैं, आगे दे देते हैं, बचता कुछ नहीं हाथों के पास, खाली रहती, खाता तो मुंह है। अब देखो जीवा को स्वाद आया, खाना खाया, लेकिन जीवा कोई उसे अपने पास थोड़े रखेगी, वो फिर अंदर पेट में जाएगा। अब पेट कोई उसे अपने पास थोड़े रखेगा, खुश हो गया मैं भर गया, वहां भी प्रोसेस होगा, खून बनेगा, और खून भी सारा पेट में जमा नहीं होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी की हर दिशा में, और वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हाथों को भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा, ताकि इनकी ताकत बनी रहे और ये फिर काम करेंगे। तो देने की भावना, प्रवाह निरंतर है, ऐसे बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, मेरे से जो मिलता है वो आगे देते जाओ। हाँ, मनुष्यों से लेने की कामना कभी मत करना, एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये मुझे दे। दुख का मूल कारण ये है कि हम मनुष्यों से लेने की कामना करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। और उसमें भी जैसे आजकल लोग कहते हैं कि परिवार के रिश्तों में बहुत दुख है, क्योंकि परिवार के रिश्तों में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हम बाहर के व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे बीमार हो गए तो हम घर वाले से नाराज हो जाते हैं, तूने मेरा हालचाल नहीं पूछा। जो कलकत्ते में रह रहा है उससे थोड़े नाराज होते हैं कि तूने मेरा हालचाल नहीं पूछा। तो घर के नजदीकी लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते और उसमें फिर अंदर में गांठ बांध लेते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा देवता अर्थात देने वाला, उसको देना ही देना है, गिनती नहीं करनी कि चलो मैं हमेशा देता था, बीमार हुआ तब तो ये लुटा देता, नहीं, हमेशा ही देना है। देने की भावना ही व्यक्ति को स्वस्थ करती, अगर लेने की भावना रही तो आप बीमारी बढ़ जाएगी। किसी ने मुझे सवाल पूछा कि मैंने अपने एक रिश्तेदार को अपने घर में 6 महीने रखा, खिलाया पिलाया, उसकी मनपसंद चीजें खिलाई घुमाया, इंटरव्यू दिलवाई, नौकरी के लिए भी मेहनत की, और 6 महीने के बाद उसकी नौकरी लग गई और वो विदेश चला गया। उसने ना तो मुझे कभी कोई पत्र लिखा, ना थैंक्स किया। देखिए ना बहन जी, दुनिया में कैसे लोग हैं। तो मैंने उसको पलट के पूछा, आप ये बताओ कि आपने उसको अपने घर में क्यों रखा था। 3 प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि भाई मेरे पास सरप्लस मनी है, बहुत मनी है, मैं किसी के परोपकार में लगाऊं, किसी को किसी की पालना कर दूं, किसी की मदद कर दूं, इसको कहते हैं परोपकार। एक होता है मैं मेरे घर में पीजी खोल लूं, भाई मैं पेइंग गेस्ट रखूं और 6 महीने खिला करके महीने के 5,000 के हिसाब से उसको 30,000 रुपए उससे ले लूं। और तीसरा उद्देश्य होता है कि मैं पेइंग गेस्ट तो नहीं रखूंगी, लेकिन हिसाब भी नहीं रखूंगी, लेकिन मेरी बदले में लेने की इच्छा है, 6 महीने खाए पर बदले में दे जरूर, 30,000 ना दे तो 15 ही दे दे, नहीं तो 5 ही दे दे। तो मैंने उसको पूछा कि जब आपने उस लड़के को अपने घर में रखा, तीनों में से कौन सी भावना थी आपकी, पहले ये क्लैरिटी करो। बहन जी मैंने तो परोपकार के लिए रखा था। अब आप ये बताइए, जब हम किसी को परोपकार के लिए रखते हैं तो परोपकार के लिए क्या कहा जाता है, भला करो और भूल जाओ, नेकी कर और दरिया में लिख। जब पेइंग गेस्ट बनाते हैं तो उसका फार्मूला है खिलाओ और बही खाते में लिखो, उसका फार्मूला ये। लेकिन जब आप परोपकार करते हो तो उसका फार्मूला है करो और मिटा दो, मैंने कुछ किया ही नहीं। कोई आपसे पूछे कि उसको आपने 6 महीना रखा था, ना जी मैंने नहीं रखा। अच्छा, आपने उसका भला किया, नौकरी में मदद की, नहीं जी उसकी किस्मत ने उसे नौकरी लगवाई, मैंने क्या किया। अच्छा, आप उसका कुछ आपको चाहिए, ना जी मुझे क्यों चाहिए, उसने मेहनत की उसे फल मिले, मैं तो भरपूर हूँ। परोपकार वाले का उत्तर तो ये होता है, पेइंग गेस्ट वाले का उत्तर होता है, हाँ भाई जल्दी से मेरे 30,000 लौटा दे ताकि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूं। और जिसने लिखत नहीं की केवल मन में रखा, वो भी पहले से क्लैरिटी कर दे, भाई मैं रख रही हूँ सारा नहीं तो कभी जब तेरी नौकरी लग जाए मुझे याद कर लेना। तो बाद वाली 2 बातें तो उसने कही नहीं, उसने तो ये कहा कि मैंने परोपकार के लिए रखा। पर होता क्या है, जैसे आजकल चीज के ऊपर लेबल तो लगा देते हैं शुद्ध देसी घी और भीतर होती है मिलावट, तो ऐसे ही ऊपर लेबल तो लगा दिया परोपकार और अंदर भरा हुआ है इच्छाएं, इसलिए वो भीतर से दुखी है। बाहर से तो दिखावा यही है कि मैंने परोपकार किया, बोतल के बाहर तो परोपकार लिखा है, भीतर उथल पुथल मची हुई है, 6 महीने हो गए, कुछ लौटाया नहीं, पूछा भी नहीं, पत्र भी नहीं दिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पारदर्शी बनो, जो भीतर है वही बाहर, नहीं तो दुखी रहोगे। या तो भीतर वाली भावना प्रकट कर दो, उसको एक बार फोन कर दो, कब दे रहा है मेरे 30,000, और नहीं तो जो परोपकार है उसको भीतर ले जा करके भूल जाओ। तो हम में से अधिकतर की यही समस्या है, हम भला करके भूलते नहीं, अंदर ही अंदर रिपीट करते हैं और बाहर लेवल लगाते हैं, मैं जी बड़ा परोपकारी हूं, मैं जी बड़ा परोपकारी हूं, बड़ा निस्वार्थ। तो बाबा ने बच्चों को, हम बच्चों को कर्म की गहन गति बताई। कैसे कर्म की गहन गति बताई, हमारे यहाँ 3 चीजें बाबा ने मुरली में बताई हैं, दान, महादान और वरदान। पहला है दान। दान माना मैंने किसी को कुछ दिया, स्थूल चीज दी, कपड़ा दिया, भोजन दिया, मकान दिया, ये दान। दान का फार्मूला ये है कि जो मेरे से लेगा वो मेरे से नीचा ही बना रहेगा और मैं देने वाला ही बना रहूंगा, लेकिन जो मेरे से लेगा उसको कर्म फिलोसोफी के अकॉर्डिंग कभी ना कुछ मुझे वापस देना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में हजारों सालों से दान चला आ रहा है पर गरीबी फिर भी नहीं मिटी। इतने लोग दान करते हैं, बड़े बड़े दानी पहले भी थे आज भी हैं। क्यों नहीं मिटी? क्योंकि लेने वाला एक तो उस जैसा देने वाला बन नहीं पाता, लेता है और अपने ऊपर कर्ज चढ़ाता है और फिर इस जन्म में या अगले जन्म में उसे लुटाना पड़ता है, वो गरीब का गरीब ही बना रह जाता है। ये है दान का फार्मूला। ये सबसे लोअर स्टेप की चीज है जिसमें एक बार किसी की भूख मिट गई, एक बार किसी की सर्दी गर्मी से बचाव हो गया, पर वो भिखारी ही बना रहेगा। दूसरा है महादान। महादान में हम क्या करते हैं, अपने गुणों का दान करते हैं और गुणों का दान कह के भी नहीं करते, स्पीच से भी नहीं करते, गुणों का दान किसी के ऊपर दबाव डाल करके भी उसे गुणवान नहीं बनाते, सिंपली हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे कर्मों में से चुन चुन करके गुण अपने व्यक्तित्व में पिरो लेता है और हमारे जैसा ही बन जाता है। इसको कहते हैं हमने अपने कर्मों द्वारा दान दिया, अपने चरित्र द्वारा दूसरे को चरित्रवान बनाया, कर्मठता के द्वारा दूसरे को कर्मठ बनाया, गुणों के द्वारा दूसरे को गुणवान बनाया। ये एक ऊंची स्टेज है जिसमें दूसरे व्यक्ति को हम एक आदर्श के रूप में मिले। उसमें ताकत तो थी गुण सीखने की, पर कोई आदर्श मिल नहीं रहा था, हम एक आदर्श के रूप में मिले और वो हमारे से गुण उठाता गया और गुणवान बन गया। बाबा ने हमको दान देने की छुट्टी नहीं दी, किसी को भी दान मत दो, धन वस्त्र ये चीजों का दान, अकेला धन और वस्त्र का दान मत करो। हाँ, जरूरत के समय किसी को वस्त्र का दान दिया लेकिन साथ में ज्ञान भी दिया और उसको ये भी कह दिया कि देखो भाई जरूरत है, आज तुम ये वस्त्र पहन लो, लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब कुछ समय के बाद तुम भी मेरी वाली सीट पे आओगे और किसी को वस्त्र दान करने योग्य बन जाओगे, अगली सीढ़ी पे चढ़ो। किसी को भोजन खिलाया तो हम उसको साथ में ये भी कहते हैं कि भाई इतने कर्मठ बनो कि आज तो किसी का खा रही हो, कल खिलाने लायक बन जाओ, तो तुम्हारे में भी ये कर्मठता आ सकती है। अगर जरूरतमंद को देना भी पड़े तो साथ में ज्ञान भी दे दो। तो बाबा ने हमको दान की छूट नहीं दी, महादान की छूट दी। अपने गुणों से दूसरों को गुणवान बनाओ। ये भी कर्म करते हुए ये मत सोचो कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूं तो मुझे देख के ये बैठी हुई है ना, ये भी जल्दी जल्दी करे, वो कभी नहीं करेगी, क्योंकि आप दिखावे से कर रहे हो और कामना से कर्म कर रहे हो। आप बाबा की याद में कर्म करो, दूसरा आप पे ही देख लेगा आपको। जैसे पिछले दिनों एक छोटी सी बात आई थी हमारे सामने कि एक शहर का बहुत अमीर व्यक्ति था, उसका बेटा बीमार हो गया और संडे का दिन था, वो हॉस्पिटल में उसे लेके गया। अब संडे को हॉस्पिटल में तो डॉक्टर मिलेगा नहीं, हाँ कुछ नर्स जो नजदीक में रहती थी उनको उसने रिक्वेस्ट की, इमरजेंसी केस है डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आया और वो बेचैनी में टहल रहा था, आते ही वो बरस पड़ा, अमीर भी था और थोड़ा ईगो वाला भी था। डॉक्टर साहब आपने कितनी देर कर दी, मेरा बच्चा कितना सीरियस है, आपका बेटा अगर ऐसा सीरियस होता तो आप क्या करते। तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला, उसने कहा साहब आप घबराइए नहीं, मैं अभी अभी बस ऑपरेशन कर देता हूँ, भगवान आपके बच्चे की रक्षा करेगा, भगवान को याद कीजिए, चिंता मत कीजिए और साहब अपने बच्चे के लिए दुआ कीजिए। ऐसे कह के मुस्कुरा के हाथ मिला के उसको कंसोलेशन दे के डॉक्टर अंदर गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया, बोला आपका बेटा खतरे से बाहर है, ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, आपको बधाई हो, आपको अपने पुण्यों का फल मिला। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपको भी शुक्रिया, आपने अच्छा ऑपरेशन किया। पर डॉक्टर तो फटाफट भाग गए, तो फिर उसको ईगो आ गया, कैसा अहंकारी डॉक्टर है, मेरे धन्यवाद का उत्तर भी नहीं दिया। तो नर्स को कहने लगा कि देखो ये डॉक्टर कैसा है, मैंने इसको थैंक्स किया पर बोला ही नहीं। तो नर्स बहुत सीरियस हो गई, उसने कहा बाबूजी आपको पता नहीं है, कल इस शहर में एक बड़ी दुर्घटना में इसका इकलौता बेटा शरीर छूट गया और आज ये उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा। आप मेरा जब फोन गया तो इसने मन में सोचा कि मेरा बेटा तो चला गया, मैं किसी और के बेटे को तो बचा दूं, तो ये संस्कार को बीच में छोड़ करके तैयारी को और ऑपरेशन करने आया था। और ऑपरेशन भी इसने कितने बैलेंस के साथ किया, क्या आपको इसके चेहरे से लगा कि इसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई, इतना बैलेंस रख करके इसने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हो गया फिर ये क्यों टाइम बर्बाद करता, ये अगले काम में चला गया। तो इस व्यक्ति को बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मेरा बेटा तो जिंदा था, फिर भी मैंने डॉक्टर को गुस्से में बोला, डॉक्टर फिर भी मुस्कुराया और फिर भी इसने नहीं, तो गुस्से वाले को भी गुस्सा आ जाता है, जाने दे तूने मेरे पे गुस्सा किया, मैं भी देख लूंगा तेरे बेटे का। लेकिन देखो इतना प्यार से ऑपरेशन किया और कुछ भी नहीं बोला, और मैं कितना गुस्सा कर रहा, मुझे भी मेरा गुस्सा छोड़ना। तो वो डॉक्टर के घर गया और उससे माफी मांगी और उससे वायदा किया कि डॉक्टर साहब आपने इतना बढ़िया ऑपरेशन किया, इसकी सबसे बढ़िया फीस यही है कि मैं आज के बाद गुस्सा भी और ईगो भी दोनों चीजों का परित्याग कर दूंगा और आपकी तरह नम्रचित बनूंगा। अब इसको हम कहेंगे महादान, और इस महादान से कितना फायदा होगा, ये व्यक्ति जीवन भर हजारों लाखों के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हजारों लाखों को फायदा होगा, जो इस बिजनेसमैन के कॉन्टेक्ट में आएगी हजारों लाखों को फायदा होगा। दान दिया खिलाया, चलो 100 को खिला दिया, 1000 को खिलाया, एक ही टाइम खिलाया, दोपहर खिलाया शाम को फिर भूख लगाई, लेकिन गुण का दान किया, वो इस जीवन में भी और फिर अगले जीवन में भी आत्मा के साथ जाएगा। तो ये है महादान। और तीसरा है वरदान, वो उससे भी ऊंची स्टेज। उसके लिए बाबा ने कहा इस दुनिया की आत्माएं बहुत कमजोर हैं, उनमें कुछ अच्छा करने की शक्ति है ही नहीं। तो वरदानी बनने का मतलब है, वरदान का मतलब है बिना मेहनत मिल जाए, तो वरदान का मतलब है मैं अपनी शक्तियां उसे दान में दूं और उसे कुछ करने की शक्ति उसमें पैदा करूं, ये है वरदान। तो वरदानी बनने के लिए हमको बाप जैसा बनना पड़े, अर्थात हमारे पास शक्तियों का बहुत सारा स्टॉक। नहीं तो जैसे अपन ने किसी को अच्छी बात बताई और वो नहीं करता तो अपन क्या करते, मैंने कितनी बार तेरे को बताई तू नहीं करता तो मैं क्या करूं, तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन मैंने उसको इतनी अच्छी बात बताई वो नहीं करता तो मेरे को रहम आया, ये इसलिए नहीं करता कि इसमें शक्ति नहीं। तो मैंने बात बताई, वो तो बताई, पर अब इसे करने की ताकत भी तो मुझे ही देनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूं, इसको अमृत वेले शक्तियों का दान दूं, थोड़ी दिन में फिर देखूं इसमें ताकत आई कि नहीं आई, तो मैं अपनी और शक्तियों का अधिक दान दूं, अधिक शुभ भावना रखूं, अधिक इसको मोटिवेट करूं, बैकअप करूं, इसकी अच्छाइयों को बार बार उभारूं, इसकी प्रशंसा करूं, ताकि इसमें ताकत आए। वाणी से भी, संकल्पों से भी, योग से भी, और मैंने उसमें पुरुषार्थ करके उसको ताकतवर बना दिया, और जो काम उससे नहीं हो पा रहा था वो अब उससे होने लगा। इसको बाबा ने नाम दिया वरदान। इसमें भी कैटेगरी है, किसी ने पहली दृष्टि में ही वरदान दे दिया, किसी को वरदान देने में समय लगा, 10 दिन लगा दिए, किसी ने 6 महीने में अपने वरदान को फलीभूत किया, जैसी जैसी आत्मा की शक्ति होगी। बाबा तो एक दृष्टि देते ही असंभव को संभव कर देता है। और हमारी तीनों दादियों को भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, अब एक मुरली थी, मुझे डेट याद नहीं है, कि मैंने तीनों दादियों को ये वरदान दिया है कि वो किसी को एक दृष्टि दे देती हैं तो उसे वर्ष भर की दृष्टि जितनी अनुभूति हो जाती है। इसलिए जब दादी बड़ी दादी थी, हमको बहुत अच्छे से अनुभव है, जब सौगात की लेन देन होती थी बाबा की सीजन के टाइम, तो दादी ईशु दादी के पास बैठा करती थी, पैसे तो अपन ईशु दादी को दिया करते थे, लेकिन दादी से ऐसे चलते चलते दृष्टि लिया करते थे, याद है ना? तो वो जो 1 सेकंड की लाइन में चलेंगे तो कितनी देर की दृष्टि मिलेगी, लेकिन उसे 1 सेकंड की दृष्टि से ही बहुत अनुभूति होती थी। अभी भी बाबा की मंच पे जाते थे तो दृष्टि लेते थे, और अभी नीचे बैठे भी दृष्टि लेते, तो थोड़ी देर की दृष्टि में भी बहुत अनुभूति होती है। और ऐसे ही मुझे याद है, एक बार मैं किसी शहर में थी तो वहां मनोहर दादी आई हुई थी, और मेरी एक जानी पहचानी बहन थी, ज्ञान में नहीं चलती थी, मैं उसको मनोहर दादी से मिलाने ले गई। दादी को उसी समय कहीं जाना था, गाड़ी में बैठने की तैयारी में थी, मैंने बोला दादी ये आपको गिफ्ट देगी और आप इसे सिर्फ दृष्टि दे दो, तो दादी ने कहा मैं तो 1 सेकंड का ही टाइम है, तो मैंने बोला 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, बस पकड़ो और दृष्टि दो। तो उसने चीज पकड़ाई, दादी ने ऐसे उसको दृष्टि दी, टोली दी, और दादी गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद वो घर गई और उसने मुझे घर से फोन किया कि मैं जब से दादी के सामने गई तब से लेकर दादी की आंखें मेरा पीछा कर रही हैं और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ दादी की आंखें दिखाई दे रही हैं। अब मैं घर पहुंच गई हूँ, घर में भी मुझे मेरी घर की दीवारों पे दादी की आंखें दिखाई दे रही हैं। इतनी प्यार से तो कभी मेरी माँ ने भी मुझे नहीं देखा जितना प्यार से वो आंखें मुझे देख रही हैं। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस आंखें दिख रही, क्योंकि आत्मा की सीधी जो एनर्जी ऊर्जा है वो आंखों में आती और फिर आंखों से सामने वाले पे जाती है, तो सामने वाले पे छाप लगती है। तो ये है वरदान, 1 सेकंड की दृष्टि भी किसी को इतनी शांति का, प्यार का या पवित्रता का, किसी भी गुण और शक्ति का अनुभव करवा देता है, जिसे वो तपस्या करके पता नहीं कितने दिन में अनुभव करता। लेकिन इसके लिए स्टॉक होना चाहिए, जितना भारी स्ट्रोक होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। और अंत समय में बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो एक सेकंड की झलक की प्यासी होंगी, एक वरदानी बोल की प्यासी होंगी। अभी भी वो कार्य चालू है, बहुत जगह हम देखते हैं तड़पती आत्माएं आती हैं और थोड़ी सी देर में ही किसी पावरफुल आत्मा से तृप्त हो जाती हैं। तो ये शक्ति हमारे अंदर आई, इसके लिए बाबा ने फार्मूला दिया 24 घंटे में एक संकल्प और एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एवरी सेकंड हम अपने में स्टॉक भरे, एवरी सेकंड हम अपने में स्टॉक भरे। मेरा सेकंड बीता और स्टॉक पहले से ऊपर चला गया, अगली सेकंड बीती और मेरे स्टॉक में कुछ ना कुछ एडिशन हो गई। जब इतना अपने पर अटेंशन होगा तब हम इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। फिर देने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं जिसके पास जो चीज होती है ना वो ऑटोमेटिक दूसरे को देता है। कबीर का एक दोहा है, साधु हो तो ऐसा हो, ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। गंधी होता है इत्र बेचने वाला, तो इत्र बेचने वाला आपको इत्र देता नहीं पर आपके पास से गुजर जाए तो भी क्या होगा, खुशबू आएगी। तो जो साधु है वो ऐसा होना चाहिए। आज बाबा ने हमको दो टाइटल दिए, एक राजयोगी और दूसरा राज ऋषि। तो साधु तो बहुत छोटा है शब्द, साधना करने वाला, राजयोगी और राज ऋषि ये तो बहुत ऊंचे शब्द, ब्रह्म ऋषि राज ऋषि ये तो कोई विश्वामित्र और वशिष्ठ इनको मिले हुए टाइटल। तो बाबा ने हमको इतना बड़ा टाइटल दिया, तो हमारी बाजू से कोई गुजर जाए उसको भी हमसे शांति की खुशबू आ जाए, ये है वरदान। तो हमको वरदानी बनना है, इसलिए तो भट्टी में आए, अपना स्टॉक भरने आए ताकि निस्वार्थ भाव से लुटाते जाएं, लुटाते जाएं, कभी कमी नहीं पड़े। दुनिया में दो प्रकार की लाइनें हैं, एक लाइन है मांगने वालों की और एक लाइन है देने वालों की। मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है और देने वालों की लाइन बहुत छोटी है। तो आमतौर पे आदमी कौन सी लाइन में लगना चाहता है, छोटी में लगना चाहता है ना। देखो अभी आइसक्रीम कोई देने लगे 5-6 लाइनों में तो अपन क्या सोचेंगे, ए लाइन छोटी है इसमें जल्दी नंबर आएगा। वो जब कार का वो टोल टैक्स होता है वो तब भी अपनी गाड़ी को कौन सी लाइन में लगाते हैं, छोटी लाइन में। और टिकट लेते हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म टिकट लेनी है तब भी छोटी लाइन में लगती। तो देखो यहां भी दुनिया में देने वालों की लाइन छोटी है, बाबा ने हमको उस छोटी लाइन में लगा दिया, हम छोटी लाइन में, बहुत ही छोटी है देने वालों की लाइन। लेकिन कई बार क्या होता है गलती से इधर वाली लाइन में से निकल के गलती से उसमें चले जाते। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी लाइन को छोड़ो नहीं, छोटी लाइन में ही रहो और रोज बाबा का शुक्रिया करो कि शुक्र है तूने मुझे देने वालों की लाइन में लगाया, नहीं तो बहुत बड़ी है। मुझे उस लाइन में नहीं लगना भगवान, मुझे इसी में रहना है, मुझे दाता ही बन के रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कहता है कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान सब कुछ दे देता है, और जो चाहिए मुझे कुछ चाहिए उसको कुछ दे करके फ्री कर देता है, फिर बाकी नहीं देता। एक वो कहानी सुनी है ना, एक कैदी बैरक में आया वो राष्ट्रपति कैदियों के पास, क्या चाहिए। पहली बैरक में किसी ने कहा डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर चाहिए भी डॉक्टर दो। दूसरी में किसी ने कहा दूध नहीं मिलता है, दूध दो। तीसरी में कहा हमको खेलने की छुट्टी होनी चाहिए, छवि खेल। चौथी में गया, उसने बोला मेरे को जेल से ही मुक्त कर दो, सब कुछ आ गया उसमें। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो जेल की चीजें चाहिए थी भाई, दूध पी के भी रहे जेल में, डॉक्टर आए पर रहे जेल में, खेले पर रहे जेल में। तो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि धन चाहिए पर रहे कलयुग की जेल में, हेल्थ चाहिए पर रहे कलयुग की जेल में, पुत्र पुत्र बहु बेटा चाहिए पर रहे जेल में। और हम क्या कहते हैं, भगवान हमको इस जेल से ही निकाल दो, सतयुग में ले चलो, बस वहां सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो समय पूरा हो रहा है क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे 2:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाना है। तो अभी 1 बज रहा है, फिर 1 घंटा नीचे जाने का भी लगेगा, खाना भी खाना है, थोड़ी कोई बहुत पैकिंग आदि भी काम बाकी है। तो इसलिए मैं अभी क्लास पूरी कर रही हूँ 12:45। आप भी अभी खाना खा के थोड़ा रेस्ट करना, फिर शाम को आपकी भट्टी शुरू होगी। ओम श्याम।
अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर।